आज है 18 मार्च दिन रविवार। नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। रूस के पूर्व जासूस को इंग्लैंड में जहर देने के मामले में ब्रिटेन और रूस के बीच जारी तनाव जस का तस।
What really matters now is the extent to which we will give...
कांग्रेस के अधिवेशन में सोनिया गांधी की पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कितना रंग लाएगी।
ठीक है, उन्होंने आक्रमण जरूर किया सरकार पे, पर कांग्रेस की क्या विकल्प है? उन्होंने कोलिशन के बारे में कुछ नहीं कहा।
गोरखपुर में बीजेपी को हराने वाले निषादों की एकजुटता क्या आगे भी बरकरार रहेगी?
हम लोगों को नीच जाति समझ करके मुख्यमंत्री आवास धोवाए हैं, ऐसे हालत में मेरे वोट लेने का अधिकार नहीं उनका।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। चेक गणराज्य ने रूस के उन आरोपों को बेतुका और बकवास बताया है जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन में हुए नर हमले में उसका हाथ है। चेक गणराज्य के विदेश मंत्री मार्टिन स्ट्रॉपनिकी ने कहा कि इन दावों में कोई दम नहीं है और ये कयासबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चेक गणराज्य समेत 4 देश कई सालों से उस नर्व एजेंट पर काम कर रहे थे जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस और उनकी बेटी पर हमले में हुआ है। रूस के पूर्व जासूस और उनकी बेटी को 4 मार्च को नर्व एजेंट के जरिए जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रूस में राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद के 6 साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। पुतिन 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में रूस की सत्ता पर काबिज हैं। पुतिन के अलावा 7 अन्य उम्मीदवार भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। उत्तरी सीरिया के अफरीन में तुर्की सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच भीषण जंग में फंसे हजारों लोग पलायन कर गए हैं। अफरीन पर नियंत्रण को लेकर तुर्की और सीरिया की संयुक्त सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा है। अफरीन का एक अस्पताल भी हवाई हमलों की चपेट में आ गया था और इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लगभग 50,000 लोग अफरीन छोड़कर जा चुके हैं, जबकि एक निगरानी समूह ने पलायन कर गए लोगों की संख्या लाखों में बताई है। अफरीन छोड़कर पास के एक गांव में पहुंची रानिया ने कहा, कल दोपहर अल मोहम्मदिया इलाके में बमबारी हुई और एक कार में शहर छोड़कर जा रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। वहां हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। रात को अफरीन के अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। गोलीबारी इतनी भयंकर है कि लोग अपनों के शव तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ये थे अफरीन से पलायन कर चुकी रानिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री ली गेंजई ने कहा कि हवा की गुणवत्ता सुधारने और इसे सांस लेने लायक बनाने के लिए 3 साल की कार्य योजना तैयार की गई है। बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, हमने 3 साल की कार्य योजना को ब्लू स्काई प्रोटेक्शन प्लान नाम दिया है। हमारा मानना है कि ये योजना जल्द शुरू होगी। ये 13वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए लक्ष्यों से अलग है। हम कुछ लक्ष्यों को बनाए रखेंगे और कुछ में बदलाव भी करेंगे। ये थे चीन के पर्यावरण मंत्री ली गेंजई के शब्द। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में फेसबुक यूजर्स का डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोपों की जाँच की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप को साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत में कथित मदद करने वाली एनालिटिकल फर्म को फेसबुक ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा इकट्ठा किया गया और उसे बेचा गया। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान की पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के एक करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। इंग्लैंड में रूस के एक पूर्व जासूस को नर्व एजेंट की शक्ल में जहर देकर मारने की कोशिश के मामले में हर दिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय जगत में बीते लगभग एक हफ्ते से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले में ताज़ा घटनाक्रम अब यह है कि रूस ने कहा है कि जिस नर्व एजेंट के इस्तेमाल की बात की जा रही है उसे कुल 4 देश बनाते हैं जिनमें चेक रिपब्लिक भी शामिल है। रूस के इस दावे को चेक रिपब्लिक ने खारिज कर दिया है। वहीं ब्रिटेन अपने इस दावे पर कायम है कि इंग्लैंड में रूस के पूर्व जासूस को जहर देकर मारने की कोशिश के पीछे रूस का ही हाथ है। इस पूरे मामले में ब्रिटेन और रूस के बीच पैदा हुआ राजनीतिक तनाव जस का तस बना हुआ है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
चेक गणराज्य ने रूस के उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि पूर्व रूसी जासूस पर ब्रिटेन में हुए हमले में उसका हाथ हो सकता है। चेक गणराज्य के विदेश मंत्री मार्टिन स्टॉपनिकी ने कहा कि ये आरोप बेतुके और कयासबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। ब्रिटेन में रूस के पूर्व राजदूत और उनकी बेटी को 4 मार्च को नर्व एजेंट के जरिए जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। अभी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर है। ब्रिटेन का आरोप है कि इस हमले के लिए रूस जिम्मेदार है और उसने ही नर्व एजेंट नोविचोक का इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन जब ब्रिटेन ने उसके 23 राजनयिकों को निष्कासित करने का ऐलान किया तो रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इतने ही ब्रितानी राजनयिकों को रूस छोड़कर जाने के आदेश जारी कर दिए। रूस और यूरेशिया मामलों के जानकार जेम्स शर कहते हैं,
What really matters now is the extent to which we will give practical...
अब मायने ये रखता है कि हम अपने नागरिकों को व्यावहारिक रूप से कितनी सुरक्षा दे पाते हैं, साथ ही वैध तरीके से यहाँ रह रहे लोगों को भी भरोसा दिला सकते हैं कि वे यहाँ महफूज हैं। इसके अलावा रूस इस बात पर भी करीबी नज़र रख रहा होगा कि कहीं ब्रिटेन रूसी कंपनियों के खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठा रहा। रूस और ब्रिटेन के बीच चल रहा शह और मात का ये खेल अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने दावा किया कि नर्व एजेंट नोविचोक बनाने के पीछे चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ब्रिटेन या स्वीडन का हाथ हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि ये देश 1990 के दशक से ही इस नर्व एजेंट को बनाने पर काम कर रहे थे। रूस और ब्रिटेन के इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन राजनयिकों को निकालने की ब्रिटेन की कार्रवाई पर रूस की जनता में गुस्सा है। मॉस्को में रहने वाले बोरिस का कहना था,
ब्रिटेन की इस कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। न सिर्फ ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को बल्कि रूस की धरती पर काम कर रहे ब्रिटेन, अमेरिका और पूर्वी यूरोप के सभी खुफिया कर्मचारियों को बाहर निकाल देना चाहिए।
हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो रूस और ब्रिटेन की इस तकरार को किसी के हित में नहीं मानते। मॉस्को की रहने वाली नास्तिया कह रही थी कि वो नहीं समझती कि ये किसी के लिए भी फायदे की बात है। पता नहीं ये ब्रिटेन के हित में है या नहीं, और क्या वो कोई सैन्य कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। नर्व एजेंट के आक्रामक इस्तेमाल को लेकर ब्रिटेन रूस को किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है, और यही वजह है कि उसने अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि रूस के पास सफाई देने का विकल्प नहीं है।
रूस के पूर्व जासूस को इंग्लैंड में जहर देने के मामले में ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव जस का तस। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुन रहे थे आप दिनेश उप्रेती की जुबानी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में कल पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर तौर पर सिरे से खारिज कर दिया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र।
लोग अब समझ गए हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके वादे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वोट हथियाने के साथ।
ये दिल्ली में कांग्रेस महाधिवेशन का मौका था जिसमें सोनिया गांधी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस महाधिवेशन में मौजूद थे। सोनिया ने हिंदी में भाषण दिया और मोदी सरकार पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड करने यानी फर्जीवाड़े के आरोप भी लगा दिए।
प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगियों के झूठे फर्जी दावो फ्रॉड और भ्रष्टाचार का हम सबूतों के साथ खुलासा कर रहे हैं।
सोनिया ने केंद्र सरकार को अहंकारी और सत्ता के नशे में मदमस्त बताया। उन्होंने भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने का शब्दशः जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की भाजपाई कोशिशों पर जवाब जरूर दिया।
4 साल में कांग्रेस को तबाह करने के लिए अहंकारी और सत्ता के नशे मदमस्त सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। साम दाम दान भेद का खुला खेल चल रहा है, लेकिन सत्ता के अहंकार के आगे कांग्रेस ना तो कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी।
पिछले साल राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालने के बाद से पहली बार उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है। इससे पहले करीब 2 दशकों तक उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। सोनिया ने ये बात दोहराई कि वे राजनीति में नहीं आना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें ले आईं। उनके भाषण में बतौर अभिभावक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश थी, साथ ही नए अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यकीन जताने का प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में हम हर संघर्ष करेंगे और पार्टी को कामयाबी की बुलंदी पर ले जाएंगे। सोनिया जब भाषण देकर मंच से उतरी तो राहुल गांधी ने उन्हें गले लगा लिया। मां बेटे के गले लगने की ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी की गईं। सोनिया से पहले राहुल गांधी ने भी महाधिवेशन की प्रस्तावना के बतौर एक छोटा भाषण दिया और नौजवान और पुराने दोनों तरह के नेताओं को साथ लेकर चलने की बात कही।
अधिवेशन भविष्य की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, मगर हमारे ट्रेडिशन में बदलाव किया जाता है मगर बीते हुए समय को भूला नहीं जाता है। तो युवाओं की बात होती है, मगर मैं स्टेज से कहना चाहता हूं कि अगर युवा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे तो जो हमारे एक्सपीरियंस नेता हैं उनके बिना कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकती है।
हालांकि सोनिया के भाषण पर भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा है कि सोनिया ने फ्रॉड और भ्रष्टाचार का जो आरोप मोदी सरकार पर लगाया है वो इसका एक भी सबूत पेश करके दिखाएं।
देखिए, वो एक माँ भी हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उनकी इच्छा तो होगी ही कि उनके पुत्र को कुछ मिले, वो तो भारत की जनता तय करेगी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात करें, एक भी भ्रष्टाचार का उदाहरण मोदी जी की सरकार के खिलाफ आज तक नहीं उठा है, काल्पनिक बात कर रही है वो। हाँ, ये जरूर है कि यूपीए के समय पर काफी भ्रष्टाचार और घोटाले हुए थे जिनके बारे में विश्व के हर व्यक्ति को शायद जानकारी है और भारत की जनता ने भरपूर रूप से वोट किया उसके खिलाफ।
इसी अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सलामत रहे। पार्टी ने अपने राजनीतिक संकल्प में इसका जिक्र किया है। आज कांग्रेस अधिवेशन पर सबकी नजरें होंगी जब राहुल गांधी अपने विस्तृत भाषण में आगामी चुनौतियों के मद्देनजर कांग्रेस के विजन और रोडमैप का खुलासा करेंगे। कुलदीप मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में ये खबर किन शब्दों में किन तस्वीरों के साथ छपी है करेंगे चर्चा कुछ ही देर के बाद। पहले सोनिया गांधी के इस भाषण के राजनीतिक मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। यही जानने के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से बात की।
ये क्लियर है कि उनका सोनिया जी का जो टारगेट था वो पूरी तरह ये सरकार के ऊपर था, क्योंकि ये जो प्लेनरी है वो कार्यकर्ताओं का प्लेनरी है और आपको कार्यकर्ताओं को एक तरह से एक मोटिवेशनल स्पीच की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस कई सारे प्रादेशिक चुनाव हार गई है 2014 के हार के बाद। तो उन्होंने चिकमगलूर का जिक्र किया था कि इंदिरा गांधी चिकमगलूर में लोकसभा चुनाव इमरजेंसी के पश्चात हारने के बाद उन्होंने वहां से चुनाव जीता, फिर उभर के आई कांग्रेस। तो कुछ जो चिकमगलूर का है, मैं मानती हूँ कि वो काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो कर्नाटका में है और अभी हाल में कर्नाटका का चुनाव है और कांग्रेस को किसी तरह वो अपनी सरकार या अपनी अपने आप को पावर में वहां रखने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, उन्होंने आक्रमण जरूर किया सरकार पे, पर कांग्रेस की क्या विकल्प है? उन्होंने कोलिशन के बारे में कुछ नहीं कहा। अभी हाल ही में जो जितने घटना हुए हैं त्रिपुरा चुनाव के बाद या फुलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव के बाद, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो पावरफुल क्षेत्रीय दल हैं जैसे तृणमूल कांग्रेस, तो वो सब कांग्रेस की ओर नेतृत्व के लिए नहीं देख रहे हैं। अब ममता जी ने अखिलेश को बधाई दिया जरूर, एक तरह से मायावती को भी बधाई दिया, ये कोई स्पष्ट तरीके से नहीं कह रहा है कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में अगला विकल्प देने की प्रयास करेंगे।
ये तय भी नहीं हो पाएगा बहुत आसानी से कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकी दल क्या चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या फिर चुनाव के बाद की परिस्थिति में क्या राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे।
इसके लिए सबसे पहले राहुल जी को कर्नाटका का चुनाव जीतना पड़ेगा किसी भी तरह, और उसके बाद आ रहे हैं चार अहम चुनाव, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीन प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, तो अगर मानिए कांग्रेस ये तीन चुनाव जीत जाती और कर्नाटका बचा लेती, तब तो क्लियर है कि राहुल का नेतृत्व एक तो मजबूत हो गया है और वो उनकी एक अथॉरिटी हो जाएगी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि कांग्रेस ही लीड करेगी विपक्ष को, उनका वो दावा और मजबूत बन जाएगा। ये मैं कहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ममता, अखिलेश, मायावती वगैरह उनको तुरंत स्वीकार करेंगे, लेकिन उनका दावा जरूर मजबूत होगा।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामस्टेशन, और अब बात उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट की, जहाँ निषाद समुदाय से आने वाले प्रवीण निषाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एक ऐसा राजनीतिक चमत्कार कर दिखाया कि बीजेपी और गौरक्ष पीठ के 29 साल से जारी एकाधिकार को एकदम से ध्वस्त कर दिया। तो ये जो निषादों की एकजुटता इस चुनाव में नजर आई, क्या वो एकजुटता आगे भी बरकरार रहेगी या विपक्षी दल इस एकजुटता में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे? जानते हैं गोरखपुर से समीर आत्मज मिश्र की इस रिपोर्ट में।
यह गंगा जल से ला करके विधानसभा धोवाए हैं, हम लोगों को नीच जाति समझ करके मुख्यमंत्री आवास धोवाए हैं, सांप चचूनर समझ रहे हैं, तो ऐसे हालत में मेरे वोट लेने का अधिकार नहीं उनका।
गोरखपुर में निषादों के बड़े नेता कहे जाने वाले जमुना निषाद के बेटे अमरेंद्र निषाद के घर पर कुछ इस तरह से चुनाव बाद की स्थितियों पर चर्चा हो रही थी। छोटे से हॉल में अंधेरा था, कुछ लोग बैठे थे, शायद कुछ देर पहले ही बिजली गई रही हो।
गोरखपुर में भी लाइट जाती है क्या? लाइट नहीं आ रही है।
एक अरे पहले तो ना जाता है, लेकिन कल से एकदम लाइट काटा थी।
कल से लाइट कट रही
है? हाँ, कल का। अब वो तो मुख्यमंत्री जी बता पाई हैं कि वो लेटिया के पौरवा के कहा भाई गायब हो गए का समय, चार घंटा पाँच घंटा कल कट ले, आज भी काटा था और आप लोग भी देखल जाता कि
वोट नहीं दिए इसीलिए कट रही है।
असंभवता महाराज यही सोचे थे तब ना।
लेकिन 4 लाख लोग वोट दिए भी तो हैं,
तो वो 4 लाख के लिए दिक्कत का है, वो हारे हैं तो 4 लाख भी उसी में आ गए हैं दर्जे में, तो उनका भी घर अंधेरा में रह रहा है अब।
गोरखपुर में प्रवीण निषाद ने हाल ही में लोकसभा उपचुनाव जीता है और कभी उनके विरोधी रहे अमरेंद्र निषाद और उनके समर्थक अब साथ में हैं। चुनाव में प्रवीण निषाद अपने समुदाय के अकेले उम्मीदवार थे और निषाद यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा हैं। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ को यहाँ से तभी कड़ी टक्कर मिली है जब उनके मुकाबले इस समुदाय का कोई व्यक्ति खड़ा होता था। सपा नेता अमरेंद्र निषाद को विश्वास है कि निषाद समुदाय आगे भी सपा के ही साथ रहेगा।
बिल्कुल है, ये तो हमें उम्मीद है कि अभी इसके जब 19 में चुनाव होंगे निषाद कम्युनिटी और अधिक मात्रा में जुड़ेगी, अभी समाजवादी पार्टी के साथ हम लोगों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं।
लेकिन गोरखपुर के राजनीतिक गलियारों में ये खास चर्चा है कि पिछले कुछ समय से अति पिछड़ा वर्ग के बिखरे मतों को जुटाने में लगी बीजेपी की इन पर अब तक नजर कैसे नहीं पड़ी। गोरखपुर के पत्रकार नवनीत त्रिपाठी कहते हैं,
देखिए कम से कम गोरखपुर लोकसभा सीट पे निषाद तो मतलब प्रभावकारी स्थिति में है। ऐसा नहीं कि संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद मतलब अकेले नेता हैं, यहाँ ढेर सारे निषाद नेता हैं, वो लोग भी अपना वजूद बचाए रखने के लिए संघर्ष तो करेंगे ही, और संघर्ष में रणनीतियाँ बनेंगी, चाले चली जाएंगी, और उसमें मतलब कुछ न कुछ तो होना ही है। निषाद को भाजपा ऐसे नहीं छोड़ देगी, योगी जी भी इस चुनाव से समझ गए हैं कि निषादों को अपने साथ जोड़ना है, कुछ न कुछ तो करेंगे ही।
दरअसल उपचुनाव में सपा ने जिस प्रवीण निषाद को पार्टी का टिकट दिया था वो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। जो कि निषाद पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। 2 साल पहले उन्होंने निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आंदोलन चलाया था, जिसे तत्कालीन सपा सरकार ने बलपूर्वक कुचल दिया था। फिलहाल अब वो सपा के साथ हैं, लेकिन ये साथ आगे भी कितना बना रहेगा, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव कहते हैं।
उस समय जो आंदोलन हुआ था उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तत्कालीन पुलिस अधिकारियों ने जो भी कार्रवाई करी वो कार्रवाई जरूरी हो गई थी, फिर भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाया। जो लोग जेल गए जांच करा करके जो निर्दोष लोग थे उन लोगों को अखिलेश यादव जी की सरकार ने न्याय किया उन लोगों के साथ।
यही नहीं, जानकारों के मुताबिक निषाद समुदाय के जो भी 3-4 नेता हैं उनमें आपस में भी बहुत एकता हो और वर्चस्व की लड़ाई ना हो ऐसा नहीं है। खुद अमरेंद्र निषाद कहते हैं कि जो आंदोलन संजय निषाद ने चलाया उसे उनके पिता जमुना निषाद ने शुरू किया था।
डॉक्टर संजय निषाद ये निषाद बिरादरी को एकत्रित करने का काम कर रहे थे, समाज का संगठन चला रहे थे उस समय। तो संगठन चलाने के हिसाब से संगठित कर निषाद को 17 जातियों को जो पिछड़े जातियां 17 उनको अनुसूचित जाति का दर्जा जो समाजवादी पार्टी ने कहा था तो हमने तो कर भी दिया था। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो संगठन वो चला रहे थे वो स्वर्गीय नेताजी की पनपाई हुई संगठन थी, उन्होंने इसको सींचा था, विधायक ने सींचा था।
निषादों को एकजुट करने के लिए सपा ने अपनी पार्टी के निषाद नेता की बजाय प्रवीण निषाद को प्राथमिकता दी और कामयाब भी रही। लेकिन अब जबकि निषादों के वोट पर अन्य दलों की भी निगाहें होंगी तब इस समुदाय और इनके नेताओं की एकजुटता कितनी रह पाएगी ये देखने वाली बात होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
और आइए अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। दिनेश उप्रेती मेरे सामने तमाम अखबारों के साथ बैठे हैं। दिनेश, मेरे ख्याल से तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर कांग्रेस का महाधिवेशन और तस्वीरें होंगी आज तो।
जी, आपने सही कहा, कांग्रेस के महाअधिवेशन की खबर को लगभग सभी अंग्रेजी और हिंदी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, कांग्रेस ने गठबंधन की तरफ एक कदम और बढ़ाया। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, चुनाव बैलेट से कराए जाएं। नई दुनिया की हेडलाइन है, केंद्र की मोदी सरकार से थका देश खोज रहा है रास्ता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कांग्रेस को गठजोड़ में दिखा BJP का तोड़। संडे टाइम्स की सुर्खी है, सोनिया टारगेट्स पावर ड्रंक मोदी गवर्नमेंट फॉर ड्रामेबाजी। मोदी ने भी इसका जवाब दिया है और मोदी ने नई दिल्ली में कृषि मेला में कहा कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है, देशवासियों में भ्रम फैलाने और निराशा का माहौल पैदा कर रहा है।
दिनेश, आपके हाथ में नवभारत टाइम्स जो है उसमें मुझे एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक तस्वीर और भी कई अखबारों
और कई अखबारों में ये है और जिसमें माँ और बेटे का मिलन समारोह दिख रहा है। तीसरे मोर्चे पर बातचीत के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ममता बनर्जी से मिलेंगे, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर। के चंद्रशेखर राव। इंडियन एक्सप्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की उस तस्वीर को पहले पन्ने पर छापा है जिसमें वो भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया के फ्रेम पकड़े हुए हैं।
दो अलग अलग विचारधाराएं।
जी, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बसपा के साथ गठबंधन लंबे समय तक चलेगा।
अब कितने लंबा चलेगा ये तो देखने वाली बात है।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त के भारत नहीं लौटने की खबर को द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त तब तक भारत नहीं लौटेंगे जब तक कि सभी मुद्दे सुलझ नहीं जाते।
जनसत्ता में नजर आ रही है इससे मिलती जुलती सुर्खी, इस्लामाबाद में तैनात राजनयिकों को उच्चायोग से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया भारत ने।
हाँ, ये भारत ने दिया है पाकिस्तान को निर्देश, लेकिन जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त अपने यहाँ लौट गए हैं, भारत में जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे वहाँ लौट गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब तक सारे मुद्दे सुलझ नहीं जाते तब तक वो भारत नहीं लौटेंगे।
अच्छा,
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया 6,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा, ये सुर्खी है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर के मुताबिक चीनी के दाम लगातार गिर रहे हैं और चीनी मिलों पर किसानों का बकाया लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में बकाया राशि और बढ़ सकती है। बिहार के अररिया में कथित तौर का जो वायरल वीडियो हुआ था वो आपको पता ही होगा था, जिसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पाकिस्तान समर्थित नारे लगे हैं, तो इंडियन
तौर पर भारत विरोधी नारे।
हाँ, तो उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर दी है कि उन्होंने जो आरोपी हैं उनके परिजनों से बातचीत की और ये कहा, उसके हवाले से खबर दी है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है।
अच्छा, मतलब आवाज़ उसमें बदल दी गई, किसी और की आवाज़ लगा दी गई,
ऐसा अखबार का कहना है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के परीक्षा में गड़बड़ी की खबर को दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा बगैर ऑडिट किए सॉफ्टवेयर से कराई जा रही है। यही नहीं, पेपर अपलोड करने का काम भी आयोग ने निजी कंपनी को ठेके पर दिया है। पंजाब संकट पर आज आम आदमी पार्टी की बैठक, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर जगह दी है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की माफ़ी मांगने के बाद में आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में घमासान हो गया था और कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए थे।
दिनेश, पंजाब से संबंधित एक और खबर मैं देख रहा हूँ, बेअंत सिंह के हत्यारे तारा सिंह को मृत्यु तक उम्र कैद, ये सज़ा सुनाई गई है उन्हें।
जी, ये खबर कई और अखबारों में भी है। इसके अलावा कोलंबो में खेली जा रही निधास ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। सभी खेल प्रेमियों को मुझे लगता है कि इसका इंतजार रहेगा।
और बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, इसी खबर को और बाकी खेल की खबरों के लिए आइए लगे हाथ सुन लेते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल भारत की पीवी सिंधु कड़े संघर्ष के बावजूद जापान की अकाने यामागुची से सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। महिला एकल वर्ग में चौथी वरीयता के साथ खेलने वाली पीवी सिंधु दूसरी वरीयता हासिल अकाने यामागुची से 1:19 तक चले मैच के बाद 19-21, 21-19, 21-18 से हार गई। आज फाइनल में अकाने यामागुची का सामना चीन ताइपे की ताइसुयुंग से होगा। इससे पहले खेले गए एक अन्य सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइसुयुंग ने 8वीं वरीयता हासिल चीन की चेन्यूफेई को 1:04 तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-15, 22-20, 21-13 से मात दी। उधर श्रीलंका में खेली जा रही निधास त्रिकोणीय 2020 क्रिकेट सीरीज का फाइनल आज भारत और श्रीलंका को आखिरी ग्रुप मुकाबले में हैरतअंगेज रूप से 2 से हराने वाली बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। बांग्लादेश को उस मुकाबले में जीत तो मिली, लेकिन उसके और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। आखिरकार इसका खामियाजा बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन को भुगतना पड़ा और उनकी मैच फीस पर 25% जुर्माना लगाया गया है। मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जमकर नागिन डांस किया। भारत को भी आज उनके डंक से बचकर रहना होगा। बांग्लादेश ने तो इससे पहले भी श्रीलंका को हराया था। दूसरी तरफ भारत की शुरुआत श्रीलंका से हार के साथ जरूर हुई, लेकिन उसके बाद भारत ने लगातार 3 के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में लौटे और उन्होंने 89 बनाकर अपना खोया आत्मविश्वास भी हासिल किया। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन वैसे तो भारत को ही जीत का दावेदार मानते हैं, लेकिन कड़ी टक्कर भी देना चाहते हैं।
इंडिया इज द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट, सो वी हैव टू बी आवर बेस्ट टू बी एबल टू कम्पीट विद देम, सो आई एम होपिंग फॉर अ एक्साइटिंग फाइनल।
तो देखना है कि आज कौन चैंपियन बनता है।
और इसके साथ ही भारत में थोड़ी देर में बजने वाले हैं 7:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। चेक गणराज्य ने रूस के उन आरोपों को बेतुका और बकवास बताया है जिनमें कहा गया था कि ब्रिटेन में हुए नर्व हमले में उसका हाथ है। रूस में राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद के 6 के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। उत्तरी सीरिया के अफरीन में तुर्की सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच भीषण जंग में फंसे हजारों लोग पलायन कर गए हैं। अफरीन पर नियंत्रण को लेकर तुर्की और सीरिया की संयुक्त सेना और कुर्दिश लड़ाकों के बीच संघर्ष चल रहा है। चीन ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में फेसबुक यूजर्स का डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल करने के आरोपों की जाँच की जाएगी। ईरान की पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के एक करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। BBC समाचार।
और इसके साथ ही नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अमीना कोटवाल ने। अगला प्रसारण शाम 7:30 बजे दिन भर, तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।